ओम शांति। आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। हमारी आदरणीय गीता दीदी जी हमारे सन्मुख है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहन से निवेदन करती हूँ, फूलों से आपका स्वागत करेंगी। वैसे तो परिचय आपको मिल ही गया है, परंतु इस संस्था का जो राजयोग है, वो राजयोग किस प्रकार से सीखा जाता है और राजयोग क्या है, उसके बारे में आपको बहुत अनुभव युक्त सत्र ये है बताएंगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी।
राजयोग के पूर्व दो सत्र आपके हो चुके हैं, कल सुबह और आज सुबह। दो मुख्य सत्यों को आपने समझ लिया है। ये दोनों लेसन आपने किए हैं, कल सुबह वाला सत्र और आज सुबह वाला, मॉर्निंग 7 से 8:30 वाला अटेंड किया है सभी ने, क्योंकि ये दो मूल सत्य जिसके आधार पर योग है, अगर वो समझ में आ जाया गया तो योग आप सहज सीख सकेंगे। प्रथम सत्र में आपने स्वयं का परिचय प्राप्त किया कि हम आत्मा हैं, शरीर से अलग है, चैतन्य शक्ति है। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य स्वयं के बारे में यही समझना है कि मैं आत्मा हूं। प्रथम लेसन से 3 अभ्यास अगर रोज आप करते रहेंगे तो बहुत जल्दी सोल कॉन्शियस बन सकेंगे, और जैसे ही सोल कॉन्शियस बनेंगे मन अंतर्मुखी बन सकेगा। आप स्वयं में केंद्रित हो सकेंगे और कर्मेंद्रियों पर संयम का अनुभव होगा, क्योंकि देह अभिमान मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए आत्माभिमानी बनना, सोल कॉन्शियस बनना राजयोग का पहला अभ्यास है, और उसके लिए 3 प्रैक्टिस रोज बार बार करते रहें। एक तो आत्म स्मृति, उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते मन ही मन ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूं। चैतन्य शक्ति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। दूसरा अभ्यास आत्मा दृष्टि, सारे दिन में आप जिस किसी को भी मिले, जिसको भी देखें, बातचीत करें, तो उनके मस्तक में देखें कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हर एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो ये रूहानी दृष्टि से देखना, देह दृष्टि से नहीं। जब देह दृष्टि से देखते हैं तो बुद्धि में भेद उत्पन्न होते हैं, ये स्त्री है ये पुरुष है, ये काले हैं ये गोरे हैं, ये युवा है ये बूढ़े हैं, है ना? इस देह भान के कारण कितने भेदभाव मन में उत्पन्न होते हैं। हमें अब स्पष्ट है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मैं स्त्री हूं गलत बात है, मैं पुरुष हूं गलत है, शरीर स्त्री है शरीर पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। तो इस रूहानी दृष्टि से देखना। और तीसरा अभ्यास है कि सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म आप करते हैं, लक्ष्य रखें कि हर कर्म मुझे आत्मा धर्म में स्थित होकर करना है। और अब आप जानते हैं हम सभी आत्माओं का स्वधर्म कौन सा है, शांति और पवित्रता। प्रथम लेसन में आपने समझा है कि सभी आत्माएं अपने असली स्वरूप में शांत हैं, शुद्ध हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, सुख आनंद प्रेम स्वरूप है। ये हमारे गुणधर्म है, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। तो हम लक्ष्य रखें मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, ज्ञान स्वरूप बनकर, सोच समझ कर करना है। मुझे कोई भी कर्म गुस्से से, स्वार्थ से, अविवेक से नहीं करना है। अगर ये तीन अभ्यास प्रतिदिन जब भी समय मिले, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, बार बार आप करेंगे तो आप बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन सके और तब आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा। और आज सुबह दूसरा लेसन किया आपने, कौन से टॉपिक पर? परमात्मा का सही परिचय आपने प्राप्त किया। इससे आप समझ गए होंगे कि भक्ति में मन क्यों भटकता था। एक कारण प्रथम लेसन से समझ में आया कि देहभान के कारण मन भटकता है, इसलिए आत्मभिमानी बनना है। और आज मॉर्निंग के सेकंड लेसन से आपको स्पष्ट हुआ कि क्यों मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होता था, क्योंकि परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते थे। जिस परमात्मा से योग लगाना है, उस परमात्मा पिता को ही हम नहीं जानते थे। हम तो अनेकों को भगवान समझते थे, कोई साधु महात्माओं को भगवान समझकर उनसे योग लगाते, कोई धर्मात्माओं को, हरेक धर्म के अपने स्थापक है, अपने धर्म स्थापक से योग लगाते थे, कोई देवात्माओं से योग लगाते थे। पर अब आपको स्पष्ट है कि परमात्मा एक ही है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, कल्याणकारी शिव, जो सर्व गुण सर्व शक्तियों के सागर है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। कोई भी मनुष्य आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। मनुष्य आत्माएं परमात्मा की याद से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा बन सकते हैं, परंतु कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। ये सत्य बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते। इसलिए कोई भी देहधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात अंडरस्टूड है, जो भी साधु सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत जो भी हैं, वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे महात्माएं हैं और परमात्मा की याद से ही महान बनते हैं। इसलिए ये भी स्पष्ट रहे कि ये जो भी साधु सन्यासी हैं महात्माएं हैं, और जिन्होंने धर्म स्थापना का कार्य किया, हरेक इतिहास जानते हैं, चाहे इस्लाम धर्म के अब्राहम हैं, मोहम्मद पैगंबर हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अशोक जरथुस्ट हैं, ये जो भी धर्म संस्थापक है वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए इन धर्म स्थापकों ने स्पष्ट कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर हैं, हम खुदा के पैगंबर हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है। तो ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात, बहुत विवेक से निष्पक्ष भाव से समझनी है कि हम जिन भी देवी देवताओं को पूजते रहे हैं, मानते रहे हैं, हिंदू भाई बहने कितने देवी देवताओं को मानते हैं? हम जिन भी देवी देवताओं को मानते रहे हैं, पूजते रहे हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राम सीता है, श्री राधे कृष्ण है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती है, श्री गणेश हनुमान महाकाली है, जिन भी देवी देवताओं को हम पूजते हैं वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाता है। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है और ना ही इसमें भक्ति के कोई भी क्रियाकांड नहीं है। कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। इसलिए जब हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है, न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है। समझ गए ना, शरीर भौतिक है, पांच तत्वों से बना है। न हम प्रकृति हैं, न परमात्मा प्रकृति है। इसलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से या कोई प्राकृतिक शक्ति से नहीं हो सकता है। चित्र में आप देखिए कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से हो सकता है, है ना? देखो, आज मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे, ये तभी संभव है जब ये प्रकाश शक्ति है और ध्वनि शक्ति है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो कांटेक्ट स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं कांटेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। अच्छा, हम टेलीफोन के द्वारा एक दोस्त से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। और आजकल हम मोबाइल से एक दोस्त से मिलते हैं, बातें करते हैं, उससे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। तो मनुष्य का मनुष्य से भौतिक साधन प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से संपर्क होता है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। ये चित्र नहीं दिखा सकते क्या? नहीं नहीं, अभी मैंने जब बोला तब। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं, और कोई भौतिक शक्ति से परमात्मा मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। अक्सर योग माना हम क्या समझते हैं? आसन करना, प्राणायाम करना, है ना, इस प्रकार की देह दमन की हठ क्रियाओं को योग समझते। पर योग शब्द का अर्थ तो क्या है? मिलन। योग मीन्स मिलन। वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन। योग माना कनेक्शन, रिलेशन। तो ये तो शारीरिक क्रिया हो, इसमें तो कोई मिलन की बात ही नहीं है ना। तो राजयोग में कोई आसन, कोई प्राणायाम की क्रियाएं नहीं है। बेशक आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए अवश्य आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है, तंदुरुस्ती के लिए। पर जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, परमात्मा से मनोमिलन करने की बात है, उसमें कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठे, आराम से बैठिए। कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठे, है ना। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है कि माताएं, बहने, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। तो परमात्मा को याद करने की मेथड, विधि, पद्धति ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके, कोई ना कर सके। यहाँ आप खुद अपने आप को देखिए, यहाँ आप बिगर आसन आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी एक घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। है ना, आप गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे, क्योंकि आपको रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। एक सिंपल पलथी मारकर भी हम नहीं बैठ पाते, इसलिए हम कहते हैं फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठिए, परंतु मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। क्या अटेंशन देना है कि ये 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा परमात्मा मिलन के लिए मैं बैठा हूँ, प्रभु चिंतन के लिए बैठा, अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है, इस अटेंशन से बैठना। और बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं, है ना? आप ये लक्ष्य बना दें, नियम बना दें कि प्रतिदिन सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा परमात्मा मिलन के लिए, प्रभु चिंतन के लिए। तो मन से अटेंटिव होकर बैठना है। आजकल आप में से भी हो सकता है फिजिकल योग कहीं सीखते हैं, कोई आप में से भी घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर बैठ भी सकते होंगे, परंतु आप सोचिए कि शरीर से आसन लगाकर हम स्थिर बैठ गए, मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में स्थिर नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर होकर बैठ गए, तो क्या फायदा है? हमें तो मन परमात्मा में मग्न करना है, बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। केवल बाह्य शरीर से स्थिर होकर बैठने की बात नहीं। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। योग अभ्यास के समय फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है। तीसरी बात, लोग सोचते हैं हमें योग में क्या करना है, हम परमात्मा की याद में मन और बुद्धि मग्न करने के लिए क्या करें, क्या हम माला फेरें, मंत्र रटें, या मुख से आरती भजन गाएं? राजयोग में हमें क्या करना, भक्ति में तो हम ये विभिन्न प्रयास करते रहे हैं, समय प्रति समय जो भी धर्मात्माएं महात्माएं हुए और उन्होंने हमें विभिन्न अभ्यास बताए कि चलो भाई, आपका मन सहज एकाग्र नहीं होता है परमात्मा में, तो आप उनके नाम की माला फेरो। कोई ने मंत्र बताया कि ये मंत्र रटो। ये हमारे विभिन्न अभ्यास थे, प्रयास थे, लेकिन इसका रिजल्ट भी तो हम देखे ना। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो यही है ना कि हम माला फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता है। मन भी फिरता रहता है, मंत्र रटते रहते हैं और मन भी भटकता रहता है। क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, उसमें मन इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अभ्यास हो जाने के बाद ये मैकेनिकल हो जाता है। फिर आप माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहेगा, मंत्र रटते रहेंगे और मन भी भटकता रहेगा। इसलिए भक्ति में ही जो ज्ञानी भक्त हुए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, कबीर जी ने स्पष्ट कहा है कि माला फेरत युग हुआ ज्ञान मन का मैल रे। इसलिए कबीर जी ने खुद सजेस्ट किया है कि हाथ के मन के छोड़ दे मन का फेर। हाथ से मन के फेरना छोड़ो, मन रूपी मन के को फेरो, अर्थात मनोस्थिति को बदलने की बात है। हमारा मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, मन संसाराभिमुख बन गया है कि नहीं है? तभी तो वही विचार आते रहते। सारा दिन कौन सी बातें आप सोचते रहते, कौन से विचार आपको आते रहते? वही नौकरी धंधा घर गृहस्थी समाज संसार शरीर परिवार, वही बातें सोचते रहते हैं ना, क्योंकि हमने अब तक वही सोचा है। तो मन हमारा बहिर्मुखी है, संसाराभिमुख है। हमें मनोस्थिति चेंज करना है, हमें मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा भिमुख करना है। इसलिए प्रथम लेसन में आपको आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाया गया ताकि मन अंतर्मुखी बने। दूसरा अभ्यास परमात्मा चिंतन, ताकि परमात्मा अभिमुख हम बन सके। तो ये मनोस्थिति बदलने की बात है, माला फेरने की बात नहीं। और ना ही राजयोग में कोई शब्द मंत्र है, इसमें कोई मंत्र रटना नहीं है। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि मंत्र रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है। सिर्फ रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है। भक्ति में हम मंत्र शब्द मंत्र रटते हैं। आपने देखा होगा कई धार्मिक अनुष्ठानों में पुजारी पंडित ब्राह्मण श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। कितने लोग अर्थ समझते हैं बताइए? जब अर्थ नहीं समझते हैं हम अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे? इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि इसमें कोई शब्द मंत्र रटना नहीं। रटना जपना नेचुरल नहीं है, औपचारिक क्रियाएं। क्या हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनका नाम रटते हैं? रटते हैं, महेश भाई महेश भाई महेश भाई, हम ऐसा रटते हैं? हाँ नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं, हम उनका चिंतन करते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं, हम उनका नाम रटते नहीं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है। हमें मंत्र के अर्थ को समझकर जीवन में धारण करना है। ऐसा नहीं है कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना है, बोलना है, या कोई कहने की प्रथा नहीं है। कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। हमें ओम शांति बनना है, हमें शांत आत्मा स्थिति बनानी है, सिर्फ रटना कहना लिखने की बात नहीं। इसलिए इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें ना ही मुख से कोई आवाज करना है, कोई जोर जोर से मंत्र भजन आरती गाने की बात नहीं। देखो, हम मन ही मन परमात्मा को याद नहीं कर सके तो हम मुख से आरती भजन गाने लगे, कितना आवाज करते हैं। त्योहारों में, श्रावण मास में, कथा प्रसंगों में माइक लगाकर जोर जोर से रात रात भजन गाते हैं, कितना आवाज हम करते हैं। पर सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है, मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। ये आवाज की दुनिया है, ये टॉकी वर्ल्ड है। परमात्मा तो साइलेंस की दुनिया में रहते हैं, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। इसलिए अंतर्मुखी बनकर दिल के सच्चे प्यार से परमात्मा को याद करना है, इसमें कोई आवाज नहीं करना है। आरती शब्द ओरिजिनल आर्त वाणी है, अंतर की वाणी से परमात्मा को याद करना है। इसलिए राजयोग में हम साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, इस योग अभ्यास में कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। तीसरी बात, लोग सोचते हैं हमें योग कहाँ लगाना, हमें किससे मन लगाना है, कहां मन एकाग्र करें। भक्ति में तो मूर्ति सामने रखते हैं, फोटो लगाते हैं, चित्र लगाते हैं, कोई दीवा जगाते हैं, कोई बिंदु पर मन लगाते हैं। तो भाई बहने सोचते हैं कि राजयोग में हम क्या करें, हमें योग किससे लगाना है। पर अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब आप सभी भी सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं हैं, अब आप भी ज्ञानी आत्माएं हैं। दोनों लेसन किए हैं ना सबने, अब आप भी ज्ञानी आत्माएं हैं। अब आप खुद बताइए हमें योग किससे लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को नहीं जानते थे, मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे, है ना ऐसा? तो हमने अपनी अपनी भावना अनुसार, हरेक ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट के फोटो मूर्ति रख दिए, क्योंकि हम जानते नहीं थे। पर अब जबकि परमात्मा का सही परिचय आपको मिला है, अब योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से। इसलिए अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। भक्ति में अनुभव है सबको, चित्र मूर्ति फोटो रखते थे, मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े होते भी मन में दूसरी ही मूर्तें घूमती रहती थी। इसलिए आखिर कब तक हम आधार लेंगे? हमें अब एक कदम आगे बढ़ना है। भक्ति में परमात्मा को याद करने का अभ्यास जो साधनों के आधार से करते थे और क्रियाकांड से करते थे, अब परमात्मा को याद करने का अभ्यास ज्ञान बल से और मन और बुद्धि से करना है। इसलिए राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो से योग नहीं लगाना है। और आप जानते हैं अब परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं, वो तो है ही ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा भौतिक है ही नहीं ना, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना। परमात्मा को मन की आंख से देखना है और बुद्धि से विवेक से याद करना है। देखिए अभी आप इस हॉल में बैठे, अभी सूर्य इस हॉल में नहीं दिखाई दे रहा, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया? हाँ, मन की आंख से देखा ना, बुद्धि से विजुअलाइज किया ना। परमात्मा भौतिक है ही नहीं, वो तो है ही ज्योति बिंदु स्वरूप। मन की आंख से देखना है, जैसे देखने में तो शरीर आ रहा है ना, मैं आत्मा तो अति सूक्ष्म हूँ, हम अपने आप को भी तो नहीं देख सकते हैं ना, हम भी तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। परमात्मा भी देखने की चीज नहीं है। इसलिए मन की आंख से देखना है और बुद्धि से याद करना है, प्यार करना है। इसमें बाह्य कोई चित्र फोटो की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल है वो भी समझाने के लिए है। हमें उनसे योग नहीं लगाना है। आप जहां रहे हैं आपके कमरे में भी लगा है ना रेड सिंबल, वो ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल है, समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें इस प्रतीक से योग नहीं लगाना। यहाँ जो भी चित्र आप देख रहे हैं वो भी समझाने के लिए हैं, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। आपने हमारे सेवा केंद्रों की भी विजिट ली होंगी, गए हैं सेंटर पर, गए हैं अपने अपने शहर में, हमारे सेवा केंद्रों पर भी आपने देखा होगा अनेक ज्ञान के चित्र लगे हुए हैं। ये जो भी चित्र है वो ज्ञान समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना। इसलिए इसमें कोई चित्र मूर्ति फोटो का भी आधार नहीं है, कोई बाह्य क्रियाकांड नहीं है, कोई शारीरिक क्रियाएं भी नहीं। ये सहज योग है, हर कोई योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हमें घर ग्रह में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। अब जब हम ये संदेश देते हैं सभी भाई बहनों को, तो अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं? हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, जवाबदार हैं, संबंधों में बंधे हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हरेक की बुद्धि में रॉन्ग कंसेप्ट है कि योगी बनना माना तो सब कुछ छोड़ना पड़े। अब तक भक्ति में जो योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़ के हुए। इसलिए गृहस्थी भाई बहने सोचते हैं कि हम योगी कैसे हो सकते हैं? लेकिन राजयोग हमें क्या सिखाता है? राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें घर बार नहीं छोड़ना है, दुनिया नहीं छोड़नी है। क्या छोड़ना है? देहभान छोड़ना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेवारियां, संबंध, प्रवृत्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है, देहभान मिटाने की आवश्यकता है। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। ऐसा नहीं दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं, कहीं जंगल गुफा में जाके बैठें तो योगी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, आत्मा स्थिति बदल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्थान शांत है, एकांत है। कई बार आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल शांत वातावरण है, एकांत है, फिर भी मन अनेकांत में ही घूम रहा है। इसलिए स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, आत्मा स्थिति बदलनी है। अगर हम एक की याद में, एक परमात्मा की याद में स्थित है तो अपार भीड़ में भी शांति अनुभव होती है। इसलिए स्थान बदलना नहीं है। कई भाई बहने हमें कहते हैं अक्सर कि बहन जी दिल करता है हम भी यहाँ रह जाएं। हम कहते हैं यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ के ज्ञान और योग को साथ ले जाने की जरूरत है। तो जहाँ आप हैं वहाँ भी योगी बन सकते हैं, और ना ही ड्रेस बदलने की जरूरत। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से या सफेद कपड़े पहन लेने से हम योगी नहीं हो जाते हैं, इससे हम योगी नहीं हो जाते। ड्रेस नहीं बदलना है, आंतरिक वृत्ति बदलनी है, स्मृति बदलनी है, हमें आंतरिक परिवर्तन करना है। ये जो सफेद ड्रेस हम पहनते हैं ये भी हमारा यूनिफॉर्म है बस। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर विद्यालय, हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है ना? ये इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में समर्पित है इसलिए हम फुल टाइम पहनते। बाकी कोई सफेद कपड़े पहन लेने से हम योगी थोड़ी हो जाते हैं। बेशक योगी आत्मा को सफेद वस्त्र अच्छे लगते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक। आप रंगीन पहनेंगे तो आपको मैचिंग में, मिस मैचिंग में बहुत मन लगाना पड़ता है। हमारे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सफेद ही सफेद पहनना है। इसलिए कोई ड्रेस बदलने की बात नहीं है, हमें आंतरिक स्थिति बदलनी है, स्मृति वृत्ति बदलनी है। तो राजयोग घर गृहस्थ में रहकर हम कर सकते हैं। हम हरेक अपने जीवन को पवित्र योगी बना सकते हैं। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। सिर्फ पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धूप दीप करके खुश होने की बात नहीं है। भक्ति में हम नियम से सुबह शाम पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धूप दीप करके खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, पर आचरण में तो कोई परिवर्तन करते नहीं है। यहाँ कोई बाह्याचार करने की बात नहीं है। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है, पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनना है। हमें स्वयं योग्य बनना है, श्रेष्ठ बनना है। इसलिए इस इसका लक्ष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर अपने जीवन की नैया को पार करना है। एक और बात, योग में परमात्मा की याद में पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं। देखो भक्ति में कई परमात्मा को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर, ओ गॉड, हे भगवान। चिल्लाना नहीं है, पुकारना नहीं, आवाज नहीं करना है। बताया ना आप सबको कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, इसलिए परमात्मा को पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं। दूसरा देखिए, कई कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं, परंतु वास्तव में वे क्या करते रहते हैं? भगवान से मांगते ही रहते हैं, हे भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, मांगते रहते हैं ना भगवान से, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम याद नहीं करते थे, तुम तो फरियाद ही करते रहते थे। हाँ, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं है, वो नहीं है, फरियाद ही करते रहते थे। राजयोग में हम परमात्मा से मांगते नहीं हैं, हमें भगवान से मांगना नहीं है। बताइए क्यों नहीं मांगना है? हाँ, हम उनके बच्चे हैं, हम परमात्मा के वारिस है। बच्चा तो वारिस होता है ना, हम भगवान के बच्चे हैं, वारिस है। परमात्मा से प्राप्त करना हमारा अधिकार है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें लायक बच्चा बनने की जरूरत है, सपूत बनने की जरूरत है। लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? आपका अनुभव क्या है? योग्य बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। हमें मांगना नहीं है, हमें भगवान के बच्चे कहलाने लायक बनना है, योग्य बनना है। परमात्मा को तो हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, गाते हैं ना। परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि आप हमारे माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सब कुछ है, पर क्या हम अपने आप को भगवान के बच्चे कहलाने लायक हैं? है? हाँ? आप देखो कोई जवाब नहीं दे रहा है, सच्चाई बोलनी है तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, हम अपने आप को भगवान के बच्चे कहलाने लायक रहे हैं? नहीं, क्योंकि पिता दाता और हम बच्चे मंगता क्यों है? पिता शांति का सागर और हम गुस्सा क्यों करते हैं, अशांत क्यों है? पिता सुखदाता और हम दुखी क्यों हैं? सोचिए ना, कभी सोचते हैं? पिता सदा पावन पतित पावन है और हम पतित क्यों हैं? क्योंकि हम उनको भूल गए हैं, उनकी आज्ञा पर नहीं चलते, हमारा उनसे संबंध नहीं रहा, इसलिए हम भिखारी दुखी अशांत बन गए हैं। तो राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बनना है। इसलिए योगी बनना माना और कुछ नहीं करना है, कोई दाढ़ी बढ़ाना, जटा बढ़ाना, माथा मुंडाना, ये कुछ भी नहीं करना है। योगी बनना माना योग्य बनना है, ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य बनना है। और ना ही योग में हम परमात्मा को विनती नहीं करते रहते, प्रार्थना नहीं करते, हे भगवान इतनी शक्ति देना, गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। राजयोग में हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा है ही दाता, वो है ही दाता, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वो है ही दाता, वो दे ही रहे हैं। जो दे ही रहा हो उसको बार बार थोड़ी कहना चाहिए कि देना देना देना, ये तो और ही इंसल्ट करना है ना, कि भाई दे ही रहा हो ना, बार बार कहने की क्या जरूरत है, दे ही रहा। परमात्मा सागर है, अखुट भंडार है, गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, वो तो सागर है, भंडार है, दाता है, दे ही रहा है। हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें अपने में खोजने की आवश्यकता है कि पिता दाता है, दे रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आत्म खोज करने की जरूरत है, बस उसका यही एक कारण है, हमारा परमात्मा से योग नहीं है, योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन, हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं। आपके शहर में पावर हाउस है, आपको अपने घर में बिजली तो तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करेंगे। परमात्मा माइट हाउस है, पावर हाउस है, ऑल माइटी है, पर हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। हर एक अपने आप को चेक करिए, हमारे मन और बुद्धि की तारे हमने कहां जोड़ी है, हमने अपने मन और बुद्धि कहां फंसा के रखे हैं, दुनिया में, देह में, संबंधों में, वैभव में, व्यसनों में, फैशन में, बातों में, हमने तो मन वहां अटैच कर दिया है, और फिर परमात्मा से मांगते रहते हैं। इसलिए खुद को शरीर से अलग आत्मा समझकर मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना उनके मनन चिंतन में रहना उसको योग कहते हैं। तो उनकी याद से ही प्राप्ति है, स्मृति से ही अनुभूति है, मांगने की जरूरत ही नहीं। दूसरा, मान लो आपके पास लाखों रुपए हैं, पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मुझे कुछ मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा ना। प्राप्ति संबंध से होती है। जानते हो ना कि राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी की बातें आती है तो कितने संबंधी निकल के आ जाते हैं कि मेरा भी रिलेशन है, मेरा भी अधिकार है। संबंध से प्राप्ति का अधिकार मिलता है। तो योग मीन्स रिलेशन, भगवान से संबंध जोड़ना है, परमात्मा को सिर्फ मानना नहीं है, यथार्थ रूप से जानना है। अब आपने जान लिया है, अब आगे बढ़ना है, सिर्फ जानकर रुक नहीं जाना है, अब उनसे संबंध जोड़ना है। परमात्मा को अपना पिता मानो, स्वीकारो। इसलिए राजयोग में हमें परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। भक्ति में हम संबंधों का वर्णन करते हैं। बताए ना कौन सा श्लोक बोलते हो? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, गाते हैं ना। भक्ति में हम परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंधों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं। राजयोग में हम कहते हैं हमें संबंधों का गायन वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हमें उन संबंधों को फॉलो करने की, निभाने की जरूरत। आप खुद बताइए, क्या आपके बच्चे रोज घर में आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या, आप मेरे पापा हैं, आप मेरे मम्मी हैं, आप मेरे दादा हैं, ऐसे गाते हैं क्या? हैं? बच्चे को निश्चय है, परख है, यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारियों में एक छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, वो पहचानता है, उनसे संबंध है, तो ऑटोमेटिक माँ बाप की पालना, प्यार सब मिलता है ना? हमारा परमात्मा से संबंध नहीं, हम उस संबंध को फॉलो नहीं करते। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं हमें मुख से गाने की, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हमें निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माता पिता है। हमें स्पष्ट रहे ये शरीर के माँ बाप, भाई बहन, मित्र संबंधी हैं, और ये एक जन्म के हैं। ये शरीर छूटेगा, संबंध भी समाप्त हो जाएगा, नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलेंगे। ये देह के संबंध है, मुझ आत्मा के असली अविनाशी कल्याणकारी माता पिता गुरु शिक्षक परमात्मा है ये निश्चय चाहिए, दिल से स्वीकार करना चाहिए, तो नेचुरल याद रहेगी, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारा परमात्मा से सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, समर्पण है, तो हम उनकी आज्ञा पर चले। भक्ति में हम गाते हैं ओम नमो शिवाय, दो हाथ से नमन भी करते हैं, पर फिर हम उसकी आज्ञा पर नहीं चलते। आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको पांव लगे, नमन भी करें, गुड मॉर्निंग भी करें, और फिर एक भी बात माने नहीं, तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ये बाह्याचार करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मेरी बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। हमें परमात्मा के लिए सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, डिवोशन है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले ना। हम उनके ज्ञान को, गुणों को जीवन में धारण करें, हम उनके श्रीमत पर चलें, हम उनके कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार है, संबंध है, रिस्पेक्ट है। तो योग माना और कुछ नहीं करना है, भगवान से संबंध जोड़ना है, निभाना है, फॉलो करना है, तो प्राप्ति ही प्राप्ति, ऑटोमेटिक प्राप्ति है। और तीसरी बात कि परमात्मा तो दाता है, दे ही रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। बाहर मान लो जोर से बारिश हो रही है, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है तो भरेगा, हाँ भरेगा, नहीं भरेगा ना, तो समझ गए क्यों नहीं प्राप्ति हो रही है, हाँ क्योंकि लोटा ही उल्टा है, बुद्धि ही विपरीत है। हमारा योग तो कहाँ और लगा है, बुद्धि ही विपरीत है, तो प्राप्ति कहाँ से होगी। हमें बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। हम तो हाथ से ताली बजाते हैं, मुख से आरती गाते हैं, कान से भजन सुनते हैं, आँखों से मूर्ति देखते हैं, पर मन बुद्धि कहाँ है। मनोयोग बुद्धि योग परमात्मा से लगाना। तो स्मृति में ही शक्ति आती है, प्राप्ति ही प्राप्ति है, मांगने की, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसलिए राजयोग का सिंपल अर्थ ये है, भगवान को मिलन मनाना, पहले जानना है, जान करके उनसे मिलन मनाना, संपर्क रखना, संबंध जोड़ना, याद करना, प्यार करना और उनका बन जाना, उसको योग कहते हैं। तो राजयोग सहज योग है, हर कोई योगी बन सकता है, कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है, इजी एंड नेचुरल है। ये ज्ञान योग है क्योंकि इसका आधार ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद परमात्मा से दिल का सच्चा प्यार हम एकाग्र करता है तो ये प्रेम योग है। कर्म करते भी हम उसकी याद में रह सकते हैं। एक योग में सर्व योग समाए हैं। और लास्ट बात यही आपको बतानी है कि राजयोग का जब अभ्यास करने हम बैठते हैं, इतना इजी नेचुरल है कि आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर भक्ति में लोग भगवान को याद करते हैं आंख बंद करके बैठते हैं। क्यों आंख बंद करते हैं? हमारी ये मान्यता है कि आंखें खुली होंगी, हमें सब कुछ दिखाई पड़ेगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते हैं। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? भटकता है। देखो आंखें खुली हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आंखें खुली हैं, ये चार दीवार के बीच में जो कुछ है वो मुझे दिखाई देता है, पर आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती है ना? जिंदे मरे सब दिखाई देते क्योंकि फिजिकल आई की लिमिट है, पर मन की आंख की कोई लिमिट है? वो तो पास्ट में, देश में, विदेश में, सेकंड में कहीं भी जा सकता है ना। इसलिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, मन पर अटेंशन देने की जरूरत है, मन परमात्मा के प्रति फोकस करने की जरूरत है, मन चिंतन में लगाने की जरूरत है। आंखें बंद कर कितना समय आप बैठ सकेंगे? जबकि हर कोई प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, हमें अपना घर कारोबार भी संभालना है, सेवा करनी है, तो हम आंख बंद करके कितना समय बैठ सकेंगे? क्यों नहीं आंखें नेचुरल खुली रखें, मन परमात्मा की याद में रखने का अटेंशन रखें, अभ्यास करें। हमारी आंखें, अब आप बताइए, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती हैं या बंद रहती है? खुली रहती है। आंखें नेचुरल खुली रहती है, बंद करना अननेचुरल है। देखो व्यक्ति जब थका है, नींद आती है, तो आंखें बंद होने लगती हैं, वरना हमारी आंखें खुली रहती हैं। हम कहते भी हैं कि मेरी नींद पूरी हो गई, मेरी आंख खुल गई। आंखें नेचुरल खुली रहती है, बंद करना नेचुरल है। इसलिए अभ्यास के समय आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें नेचुरल खुली रहने दें। न बंद करने का अभ्यास करें, न आंखें फाड़ के बैठे। आंखें फाड़ कर नहीं बैठना, आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना। कई आंखों पर स्ट्रेस देते हैं, फिर कहते हैं आंख में जलन होती है, पानी आता है। आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, मन पर अटेंशन रखना है। और आपने हमारे केंद्र में भी देखा होगा, जब हम सामूहिक योग अभ्यास करते हैं तो जैसे आज मैं आपको योग अभ्यास कराऊंगी, आप मेरे ब्रकुटी में देखेंगे, मस्तक में देखेंगे, इस स्मृति के साथ कि आप भी आत्मा हैं और मैं भी आत्मा हूँ, ताकि हम अटेंटिव होकर योग अभ्यास करें। आप आंख बंद करके बैठेंगे, थके हुए होंगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी, हाँ सो जाएंगे आप। तो योग में सोना नहीं है, हमें श्रेष्ठ चिंतन, परमात्मा चिंतन द्वारा दिव्य अनुभव करना है। अब हमेशा कोई सामने बैठकर योग अभ्यास नहीं करा सकता है, इसलिए आपने देखा होगा हमारे हरेक योग रूम में, ये हॉल में, क्लासरूम में ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है, जो सर्वश्रेष्ठ योगी है। कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी शिव बाबा को याद करना है। हमें योग शिव बाबा से लगाना, जैसे एक फिजिकल ड्रिल मास्टर एक्सरसाइज कराता है, सुबह होती है ना आपकी एक्सरसाइज, तो वो खुद करता है और उसको देखकर आप एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। सेम ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, मैं आत्मभिमानी बनकर शिव बाबा की याद में बैठूंगी, मुझे देखकर आपको भी शिव बाबा की याद में बैठना। इसलिए हम योग अभ्यास कराने बैठते हैं या ब्रह्मा बाबा का चित्र या ट्रांसलेट रखते हैं कि हमें भी शिव बाबा से योग लगाना है। तो ये है राजयोग की विधि, आधार। भल हम भक्ति में भगवान को याद करते थे, पर आप चेक करते जाइए अपने आप को, कहीं सिर्फ नियम से याद करते थे, बस हमारा नियम है। बाप दादा के जमाने से हमारे बाप दादा करते थे, इसलिए हम भी करते हैं। बहने भी कहती मेरी सास करती थी, इसलिए मैं भी करती हूँ। पर न ज्ञान है न भावना प्यार है, इसलिए नियम से करते हैं तो न अनुभव होता है न एकाग्रता होती है। कई भगवान को याद करते हैं पर स्वार्थ से याद करते, स्वार्थ से याद करते हैं, भगवान से कुछ चाहिए इसलिए उसको याद करते हैं, है ना? मतलब से याद करते हैं, परीक्षा है, कोई मुश्किल है ना, कोई मन्नत है, तो भगवान को भी लालच देते रहते हैं ना, मतलब से याद करते हैं, निस्वार्थ भाव से याद नहीं करते। और कोई भय से भगवान को याद करते हैं कि मुझे कुछ हो न जाए, मुझे कुछ हो न जाए, कोई बीमारी न लग जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, इस भय से भगवान को याद करते हैं। कईयों को भय है कि मेरे पाप फूट न जाए, मेरे गड़बड़ घोटाले बाहर न आ जाए, इसलिए भगवान को याद करते हैं। देखो हम समझ पूर्वक निश्चय बुद्धि बनकर प्यार से कहाँ याद करते हैं। तो राजयोग में हमें ज्ञान स्वरूप बनकर निश्चय पूर्वक प्यार से याद करना है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे और जितना आपका परमात्मा से जिगरी प्यार होता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 3 दिन में योगी बन जाएंगे। बेशक योग का सही ज्ञान आप जरूर प्राप्त कर लेंगे, पर योगी बनने के लिए रोज अभ्यास करने की आवश्यकता है, रोज सद्ज्ञान को सुनने की, समझने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ कि अब आपको स्पष्ट है कि हमें परमात्मा को कैसे याद करना है, कैसे मन बुद्धि परमात्मा स्मृति में लगानी है। स्पष्ट है? हाँ? तो आज का अभ्यास हम विधि पूर्वक, पद्धति पूर्वक करेंगे तो सभी व्यवस्थित बैठ जाए। अपना डायरी, फाइल, पर्स, बैग साइड में रख दे, हाथ में, गोद में लेकर न बैठे। कमर सीधी रखकर बैठेंगे तो आप थकेंगे नहीं। भल आप कुर्सी, सोफा के बैक का सपोर्ट लें, पर स्ट्रेट बैठे। जितना हो सके 1-2 से अलग अलग होकर बैठिए, टच करके नहीं बैठिए। काफी कुर्सी सोफा खाली है, आराम से बैठिए। आंखें नेचुरल खुली रहने दे। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूँ, आप मेरे मस्तक में देखें। इस स्मृति के साथ कि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हैं। हम शरीर से यहाँ बैठेंगे पर मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे, जहां हम आत्माएं रहती हैं, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा भी रहते हैं। हमें साइलेंस में बैठना है, मन ही मन कैसे शिव बाबा को याद करें, बातचीत करें, उनका चिंतन करें। आपका नया अभ्यास है इसलिए मैं गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी। आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, पर जो सजेशन मैं दूं, जो थॉट विचार मैं आपको दूं, वो मन ही मन रिवाइज करेंगे, उसके अर्थ को रियलाइज करेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। इसे योग कहते हैं। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से डिटैच हो जाइए, आसपास के व्यक्तियों से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए। मस्तक बीच स्वयं के आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाइए कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मस्तक में स्थित होकर शरीर को चला रही हूँ। यह दुनिया मेरे लिए कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। जो इस देह की दुनिया से दूर है, सूर्य चांद सितारों से भी आगे है, जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है, मैं आत्मा ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। मैं जानती हूँ पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी हैं। मन की आंख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को मैं देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको भक्ति में खोजती रही हूँ। आज मुझे आपका सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे अपार खुशी है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। अब मुझ आत्मा को न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। मेरा लक्ष्य यही है, प्यारे शिव बाबा, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को मुझे जीवन में धारण करना है। आपके सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को मुझे अपने जीवन में धारण करना है। मेरे प्यारे बाबा, आप शांति के सागर हैं, आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। आप शांति के दाता है, मैं आत्मा भी स्वयं शांत रहूंगी, शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। प्यार के सागर बाबा, आपकी संतान में आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन बाबा, मैं आपको याद करती हूँ। मैं शुद्ध पवित्र बनती जाती हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं आपके साथ का अनुभव कर शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे ये ही निश्चय और खुशी है, मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं इस दुनिया में आपकी प्रतिनिधि बनकर आई हूँ। मुझे स्वयं शांत रहना है, सर्वत्र शांति फैलानी है, सबको सुख देना है, सबसे सुख लेना है। सबके साथ मिलकर चलना है, सबको सहयोग देना है। मैं आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। मैं स्वयं दिव्य ज्योति बिंदु, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत, शुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ। आपके सद्ज्ञान ने मेरे मन का अंधकार समाप्त कर दिया है। मेरा सद्विवेक जाग गया है। मेरी बुद्धि रोशन हो गई है। आपकी श्रीमत पर चलकर अपने शेष वर्तमान जीवन को मुझे श्रेष्ठ बनाना है। सुखदाता की संतान हूँ।